समाधान समाधान।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने ब्रदर जी के साथ एक विषय पे चर्चा की थी कि कोलकाता से हमारे पास फोन कॉल आया था। माता जी की उम्र 68 इयर्स थी, उनके पति 75 इयर्स ओल्ड हैं, एक ही बिटिया थी उनकी, उन्होंने भी पीएचडी की, शादी हुई। शादी के बाद जब वो लोग यहीं मुंबई में थे तब वो उनके पास जाया करते थे, लेकिन उनके दामाद का व्यवहार बहुत ही बुरा था और कभी कभी उन्हें धक्का भी दे दिया करते थे, कभी अपशब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे। बिटिया भी चूंकि अब पति के साथ रहना है तो शायद उतनी बात इनसे नहीं कर पाती थी। विदेश चले गए वो, सेटल्ड हो गए थे और वहां से वो फोन भी नहीं करते थे। इस बात का इन्हें बहुत ज्यादा दुख था और उस बात को वो भुला भी नहीं पाते थे कि कैसे उस चीज को जो उनके दामाद ने किया था उसे भूलें, और इसका भी दुख कि बिटिया एक ही है, अब वो भी फोन नहीं करती, तो बड़ा अकेलापन महसूस किया करते थे। कुछ अभ्यास दाता जी ने दिए थे, वो अभ्यास लगातार वो करते रहे थे और कल ही उनका फोन कॉल आया था। कल दो बहुत अच्छे फोन कॉल आए थे, इसीलिए मैं उनसे शुरुआत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उनका, मैं दो मास उनके पास रह के आई हूँ, उन्होंने न केवल फोन किया लेकिन बहुत प्यार से मुझे बुलाया और वहां रखा, और दामाद का व्यवहार भी, वो जो रिलेशनशिप है, बहुत अच्छा हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये अभ्यास करके और अब मैं माउंट आबू आना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक नया जीवन मिला है, परिवार में फिर से वो खुशहाली का माहौल आ गया है। इतना अच्छा लगता है ना ऐसे अनुभवों को सुनकर। नागपुर से हमारे पास दूसरा फोन आया। एक माता जी ने बताया कि उनकी बहू, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उन्हें जब फोन आया, ये विद्यालय से जुड़ी हुई है, कि बहुत तबीयत खराब है, आप आ जाएं, बहुत दवा भी हो रही है लेकिन बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है। डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है कि एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है वो नहीं मिल पा रहा है। अब ये वहां गई और इन्होंने कहा कि क्या आप मुझे एक हफ्ते तक इसके पास बैठ करके मेडिटेशन करने की इजाजत देंगे, एक एक घंटे के लिए, ज्यादा नहीं। और डॉक्टर्स को क्या था, उन्होंने कहा भले आप प्रेयर करें, मेडिटेशन करें। एक हफ्ते तक इन्होंने उनके पास बैठ करके अच्छी मेडिटेशन की, प्रेयर की, और एक हफ्ते के बाद ही वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने घर वापस आ गए। क्या कहेंगे आप इसे, है ना, प्रार्थना में शक्ति, मेडिटेशन में पावर। इसीलिए आप भी इसे जरूर कीजिएगा, अच्छा लगेगा, समस्याएं दूर होती चलेंगी। ये अनुभव हमें संबल प्रदान करते हैं, हमें एक ऊर्जा देते हैं, एक आशा की किरण की तरह है कि यदि हम भी अच्छी तरह ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सचमुच सारी समस्याएं निर्मूल होती चली जाती हैं। ऐसे सुंदर अनुभवों के साथ आज के समाधान की हम शुरुआत करते हैं और अभिनंदन करते हैं आदरणीय ब्रदर जी का। ब्रदर जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है।
थैंक यू।
जब ऐसे अनुभव आते हैं ब्रदर जी, व्यक्तिगत जिनसे हमारी बात हुई हो और वो खुश होकर के जब अपना अनुभव सुनाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी में सचमुच बहुत पावर है और यदि मनुष्य सच्चे दिल से और एकाग्रता के साथ ही प्रैक्टिस करे, विद फुल फेथ जिसे भावना कहते हैं
जी,
तो हर समस्या हल हो जाती है। चलते फिरते भी लोग सुनाते रहते हैं, बस मिलने आए हैं। मैंने कहा बोलो भाई, मैं तो कहता हूँ अभी टाइम नहीं है। कि नहीं नहीं, बस गुड न्यूज देनी है कि ये हमारी समस्या थी और ये बिल्कुल ठीक हो गई है। मैंने कहा फिर तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये सच है कि बहुतों की समस्याएं इनसे ठीक हो रही हैं, बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में एक मुख्य स्थान दे देना चाहिए।
जी जी जी। ये पहला एसएमएस हमारे पास आया है, ये कहते हैं कि ऐसा हमने सुन रखा है कि भगवत गीता का जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उन्हें विद्या की कमी रह जाती है इस जन्म में। क्या इस टाइम में यदि हम अपनी विद्या सही करना चाहें तो किया जा सकता है? और 35 वर्ष की अब उम्र हो गई है, अब मैं चाहती हूं कि मैं विद्या से संपन्न बनूं क्योंकि विद्या की स्थिति मेरी कम है, मुझे ऐसा लगता है, कृपया मार्गदर्शन दें। भक्ति में ऐसी शायद कहावतें हैं ब्रदर जी की, किसी का अपमान किया, भगवद्गीता का या धर्मशास्त्रों का, तो शायद तुम्हारे पास ज्ञान नहीं रहेगा।
क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथ मनुष्य की श्रद्धा का एक विषय है और इनके प्रति अश्रद्धा या कुछ गलत फीलिंग रखने से मैं समझता हूं कि इफेक्ट आएगा जरूर, भले उसे पढ़ें या न पढ़ें। किसी चीज में हमारी मान्यता, विश्वास हो या न हो, लेकिन उस चीज को सम्मान देना, इससे रिटर्न बहुत सुंदर होता है सूक्ष्म वाइब्रेशंस का। और गीता तो एक श्रेष्ठ ज्ञान की पुस्तिका है, भले लोग आज उसे पढ़ते नहीं हैं। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि पता नहीं इसमें क्या है, बड़ी गूढ़ बातें हैं, अपनी समझ से परे की हैं। पढ़ना चाहिए, मैं तो बचपन से पढ़ता आता था और बहुत फायदे हुए जीवन में। अब इनकी आयु 35 साल हो गई है, एक लंबी आयु और वो पीरियड जिसमें विद्या अर्जित की जाती है इन्होंने पार कर लिया है। फिर भी बुद्धि तो ऐसी चीज है, इसका विकास कभी भी हो सकता है, इसे अब सत्य ज्ञान को सम्मान देना चाहिए। मान लो श्रीमद् भगवत गीता न भी पढ़े तो हमारे यहाँ वही सत्य ज्ञान सहज भाषा में दिया जाता है, जिसको समझने में किसी को भी कोई कठिनाई नहीं होती। और राजयोग के बल से, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान से विवेक शक्ति बढ़ती है और विवेक शक्ति माना बुद्धि की शक्ति, तो बुद्धि तो चमत्कारी हो ही जाती है। मैंने पहले भी कई बार सुनाया है, हमारे यहाँ कई लोग ऐसे आए हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे और बड़े अच्छे कवि बन गए, ऐसे लोग आए हैं जो अच्छे लेखक बन गए, साहित्यकार बन गए। उनसे पूछो कितनी पढ़ाई है तो बहुत थोड़ी है, उनको भी लज्जा आती है। तो ईश्वरीय ज्ञान से यानी सत्य गीता ज्ञान से और योग अभ्यास से मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, क्योंकि बुद्धि सभी के पास बहुत अच्छी है, किसी की वो बुद्धि डेवलप हो पाती है, किसी की नहीं। तो ये भी अगर फिर से अपनी साधना करें और अभ्यास करें तो इनकी बुद्धि का अवश्य बहुत अच्छा विकास हो जाएगा।
जी जी जी, चलिए हम कामना रखेंगे ब्रदर जी, क्योंकि हर एक ये सोचता तो है कि बिना बुद्धि के तो वैसे भी कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं होती, तो उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगला हमारे पास इसमें साहब ब्रदर जी कहते हैं, ओम शांति सूर्य भाई जी, लगभग 3 साल से मेरे सिर में दर्द रहता है जिससे मैं किसी भी काम में मन नहीं लगा पाता हूँ, किसी वर्क पे फोकस नहीं कर पाता हूँ सिर दर्द के कारण। इसका जो कारण है वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को भी ये पकड़ में नहीं आ रहा है। ध्यान बार बार सरदर्द की ओर ही मेरा चला जाता है, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ और कोई भी कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। तो कृपया उपाय बताएं कि क्या किया जा सकता है। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये शारीरिक बीमारी है या विचारों से है, क्या है?
देखिए, ये सिरदर्द ऐसी चीज है, इसके सैकड़ों कारण होते हैं और कभी कभी डॉक्टर की पकड़ में आता ही नहीं। शारीरिक कारण भी होता है, जन्म से ही कोई चीज चली आ रही हो इस शरीर में और उसका कोई विकसित रूप न हो जो डॉक्टरों की पकड़ में है, क्योंकि डॉक्टरों की तो पकड़ में वही आएगा ना, बाहर कुछ दिखाई दे रहा उसका लक्षण, कोई तकलीफ हो रही हो। लेकिन कहा यही जाता है कि सिरदर्द अपने में कोई बीमारी नहीं है, वो किसी बीमारी का लक्षण है, किसी बीमारी की अभिव्यक्ति है, उसका इफेक्ट हो रहा किसी चीज का। मान लो भोजन हजम अच्छा नहीं हुआ तो सिर भारी हो जाएगा, तो इनडाइजेशन का इफेक्ट होता है, बहुत थक गए, बहुत टेंशन हो गई तो भी हो जाएगा। अभी इनको ये बात भी जानने की आवश्यकता नहीं कि ये क्यों हो रहा है। मैं एक तो फिजिकल चीज पहले इन्हें बताना चाहता हूँ, मेरे अब तक के अनुभव है कि बहुत सिर दर्द वालों को ये करने से काफी फायदा हो गया है, और वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। यद्यपि लोगों ने प्राणायाम को भी योगा कह दिया है, प्राणायाम तो योग का एक हिस्सा है। देखिए, योग जो महर्षि पतंजलि ने प्रारंभ किया था उसके 8 अंग थे, हैं? उसमें से आसन और प्राणायाम पहले, ये 2 हिस्से हैं। तो लेकिन ये प्राणायाम एक तैयारी करा देता है मानसिक रूप की, ताकि योग साधना में हमारा मन बहुत अच्छी तरह एकाग्र हो सके। तो एक तो इन्हें 10 मिनट रोज खाली पेट सवेरे या शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना चाहिए, इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और यदि ब्रेन की कोई चीज इसका कारण है तो वो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरा, पानी चार्ज करके पीना। अब दूसरी विधि है स्पिरिचुअल, ये फिजिकल, स्पिरिचुअल में पानी चार्ज करके पीना और ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देना। मैं अपने दर्शकों के लिए फिर से दोनों चीजें स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कैसे करें। तो पानी चार्ज करने का अर्थ है, पानी गिलास में लिया, उस पर दृष्टि डाली और 7 बार संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, दोनों संकल्प बहुत सुंदर हैं। इससे पानी चार्ज हो जाता है, वो दवाई बन जाता है और हमारी बॉडी में क्योंकि 70% से ज्यादा पानी है तो वो चार्ज वाटर उस पानी में मिलकर सारे पानी को प्योरीफाई करता है और कई शारीरिक बीमारियां इससे ठीक हो जाती है। दूसरी चीज है ब्रेन को एनर्जी देना। इसकी सिंपल विधि है कि दोनों हाथ ऐसे रब करते हुए 2-3 बार याद कर ले, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो ये जो शक्तियों के वाइब्रेशंस हैं ये हाथों से बाहर निकलने लगेंगे, चेक कर सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा अट्रैक्शन वाइब्रेशन दोनों हाथों में आ गए। अब ये ऐसे मल कर सिर पर लेफ्ट राइट हाथ रख ले, एक मिनट आंखें बंद करें और संकल्प करें कि ये प्योर एनर्जी मेरे ब्रेन को बिल्कुल परफेक्ट कर रही है, नॉर्मल कर रही है। एक मिनट रखें, ऐसा 10 बार कर लें, फिर तीसरी बार। तो इससे ब्रेन रियली बहुत अच्छा हो जाता है। जिनका बौद्धिक विकास नहीं हुआ उनका भी हो जाएगा। माताएं अपने बच्चों का कर सकती हैं, उनके ब्रेन की कई सुसुप्त शक्तियां जागृत हो जाएंगी इससे। और ब्रेन यदि परफेक्टली काम करने लगता है तो अनेक बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। तो इनसे इनका सिर दर्द निश्चित रूप से ठीक होगा।
बिल्कुल, चलिए हमारी भी कामना रहेगी बेहतर जी, क्योंकि सिर दर्द में वैसे भी व्यक्ति को कुछ सूझता
नहीं, थक जाता है, व्याकुल सा रहता है, न उसकी खुशी रहती, न वो हंस पाता, नींद भी कभी अच्छी नहीं आ पाती। तो कुछ बीमारी न होकर भी ये भयानक बीमारी बन जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपको भी जब इससे निजात मिल जाए तो जरूर खुशखबरी हम तक पहुंचाइएगा कि कैसे आप इससे मुक्त हुए, कितने दिन आपने अभ्यास किया। हमारी श्रेष्ठ कामना आपके साथ है कि जल्दी आप इससे मुक्त हो जाएं। कथा जी, अगला हमारे पास SMS है, ये कहते हैं कि मैं 21 साल की हूँ, मैं 2 मंथ से सेंटर जा रही हूँ, मैं स्टडी करना चाहती हूँ लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे स्टडी करने से मना किया है क्योंकि मेरी आईज बहुत वीक है, मुझे सब कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, मेरी जो एक कान है वो भी डेड है, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, तो लेकिन मैं स्टडी करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर्स मना कर रहे हैं बेटा जी, ऐसी सारी तकलीफ।
देखिए, पहले लाइफ है, लाइफ इज इम्पोर्टेंट जी, स्टडी थोड़ी बाद में भी हो सकती है। अब ये 6 मास, ये 2-3 चीज जो मैंने पिछली केस में बताई जी, इनकी भी ब्रेन की कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही है, आंखों को जो नर्व जा रही, किसी वो सिकुड़ जाती हैं, किसी की डल हो जाती है,
और एक कान भी डेड हो गया,
कान को भी जो नर्व जा रही जो ब्रेन से जोड़ रही है वो भी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो कभी कभी वो चीजें इतनी वीक होती हैं कि डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने का वो नहीं लेते हैं जिम्मेदारी, क्योंकि कुछ भी डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो इनको एक तो पानी चार्ज करके पीना, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये थोड़ा सा करें, ये देख लें कि इनको कोई कष्ट तो नहीं होता, भले 2 मिनट से प्रारंभ करें, धीरे धीरे उसको 3 मिनट बढ़ाएं, फिर 5 मिनट तक ले जाएं, और भले 4-5 मास में 10 मिनट तक रोज ले चले, या ऐसा करें 1-1 मिनट 3-4 बार कर लें सारे दिन में, और ब्रेन को एनर्जी देना इनको, क्योंकि ये सब चीजें ब्रेन से कनेक्टेड है, वही विधि 10 मिनट सवेरे 10 मिनट शाम को, इसमें कोई दबाव पड़ता नहीं ब्रेन पर, कोई तकलीफ नहीं होती, और इनकी अगर नर्व वीक हैं वो स्ट्रांग होने लगेंगी और दोनों चीज इनकी ठीक हो सकती हैं। और उसके बाद ये अपना पढ़ें, कोई बात नहीं, अभी इनको ध्यान देना, ना टीवी ज्यादा देखें, ना नेट का ज्यादा प्रयोग करें, क्योंकि आईज उनमें लगती है ना, कंसंट्रेशन होता है, ये पढ़ेगी, अब जबरदस्ती ये पढ़ तो ले, लेकिन इसकी आई फिर इतनी वीक हो जाए कि फिर वो आगे का जीवन अच्छा,
आंखें भी कमजोर हैं, और सब चीजें हिलती डुलती भी दिख रही हैं, चक्कर भी आ रहा है, तो बहुत सारी तकलीफें एक साथ हैं। तो प्रताप जी, ये सारी चीजें कितने दिन में आपको लगता है यदि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की जाए तो ठीक ठीक होने लगेंगे?
देखिए, मैं तो कहा कि अगर ये बहुत अच्छी तरह फोकस करें, टाइम दें, तो 3 मास में बहुत अच्छा अनुभव कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि इनकी सीरियस स्थिति है, ये कुछ दवाई भी लेती रहे, भले ही 2 मास के बाद लें, मेडिसिन, मेडिकल साइंस भी काफी मदद कर रही है मनुष्य को, वो भी ये करें और ये अभ्यास भी करें, तो 6 मास में मैं समझता हूँ इनका पूरा आगे का जीवन सहज और सफल हो जाएगा।
बिल्कुल अभिता जी, मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूँ, आजकल जैसे छोटी उम्र में ही ये सारी तकलीफें देखने में आती हैं, जैसे आपने भी कहा था कभी कि 5 साल के बच्चे को कैंसर हो गया, या हार्ट में कहीं होल निकल आते हैं, किसी की जो गले की नलियां हैं वो ठीक से विकसित नहीं हो पाई हैं, अब ये भी 21 साल की है और इतनी सारी तकलीफें आ गई हैं, तो क्या कारण लगता है बीमारियां क्यों इस तेजी से बढ़ रही हैं और बच्चों को, यूथ को ज्यादातर होती चली जा रही?
बिल्कुल होती जा रही है। अभी 4-5 दिन पहले ऐसा ही एक मैसेज था कि 6 साल का उनका लड़का है और कैंसर से पीड़ित है, और एक दूसरा कल ऐसे ही एक बैड न्यूज आया, एक माँ बेचारी बता रही थी अपनी समस्याएं, कई बताने के बाद उसने कहा मेरे को पोतरे ने जन्म लिया है, 6 मास हुए हैं, 6 मास से ही लगातार रो रहा है, कहा हमारे घर में एकदम जैसे दुख के वाइब्रेशंस फैल गए हैं, बेचारी बोलने लगी क्या हमने इतना पाप किया है कि हम अनेक ऐसी पीड़ाओं से आजकल गुजर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, बच्चे के जन्म से तो घर में खुशी का माहौल छा जाता है, लेकिन उसका निरंतर रोना, उससे जो वाइब्रेशंस फैल रहे हैं वो कहां डर सा पैदा कर रहे हैं हमारे परिवार में। अभी दो दिन पहले की ये बात है, तो ये सब हो रहा है पूर्व जन्मों के कारण। देखिए बच्चे ने अभी तो कुछ किया ही नहीं, कहां जन्म लेते ही दुख है उसे और वो रो रहा है। हंसने का तो जैसे हमने 6 मास में उसके चेहरे पे देखा ही नहीं तो बच्चे तो मुस्कुराते भी है ना, और माँ बच्चों से बात भी करने लगती है, खिलाने लगती है उन्हें, बहुत गुड फीलिंग उनकी ओर से आती है। तो इसीलिए हम सदा कहते हैं, मनुष्य को ध्यान दिलाते हैं कि पुण्य कर्म बहुत बड़ी चीज है। मनुष्य पाप कर तो लेता है और वो पाप करके बड़ा खुश होता है कि दूसरे के हमने 50 लाख ले लिए, हमने दिए नहीं, वाह हम देखो कैसे समझदार हैं, मार लिए उसके पैसे, वो भी अपने को क्या समझता था। लेकिन मनुष्य को पता चलना चाहिए कि हर कर्म का प्रतिफल मनुष्य को लेना ही होता है, उससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए पाप से मनुष्य को बचना चाहिए, पर कलयुग के अंत में ये पाप की गति बहुत तेज होती जा रही है, और इसमें भी पैसा मनुष्य बहुत पाप करा रहा है, पैसे का लोभ, बस भाई भाई को हिस्सा नहीं देगा, पत्नी कुछ कर देगी कि दूसरे को, जेठानी को या देरानी को देना ही नहीं है कुछ, कुछ ब्लैक मैजिक करा देते हैं, और मनुष्य भूल जाता है कि इसका इफेक्ट तुम्हारी संतान पर बहुत बुरा आएगा। तो पाप से सभी बचे, पुण्यों का खाता बढ़ाएं। बस मैं इशारे में यही कह रहा हूँ, ये पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का परिणाम होता है, क्योंकि किसी के साथ भी कुछ भी बिना कारण के नहीं हो रहा है। कोई कहे ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ अन्याय क्यों कर रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया, इस जन्म में तो हमने कोई पाप नहीं किया, ये नहीं है। बिना किसी कर्म के फल मिल ही नहीं रहा है, इसलिए मनुष्य को पुण्य कर्म करने ही चाहिए, और ये समझ लेना चाहिए। हमारा ईश्वरीय ज्ञान हमें यही रोशनी देता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। अनेक मनुष्य संसार में पाप कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं कि वो पाप कर रहे, वो खुश हो रहे हैं, तो यही इसका मुख्य कारण है। और साथ में ये भी जोड़ दूं कि पूर्व के पाप कर्म अगर किसी के ज्यादा हैं तो उन्हें योग अग्नि में जलाया भी जा सकता है। तो राजयोग एक ऐसी अग्नि भी है, योग को एक अग्नि भी कहा जाता है, जिसमें पास्ट के विकर्मों को नष्ट किया जा सकता है और तब मनुष्य अपने भविष्य को बड़ा उज्जवल बना सकता है।
मतलब योग किया जाए और योग से हम अपने ये जो पाप कर्म है उन्हें नष्ट करें, यदि अब हम समझदार या बड़े हो गए हैं तो, और साथ ही पुण्य कर्म करें। तो प्रता जी, ये पुण्य कर्म, वैसे मैं कई बार पूछ चुका हूँ, फिर मैं जानना चाहूंगा कि पुण्य कर्म है क्या, व्यक्ति क्या क्या करे जो पुण्यों के कर्म के रूप में जाने जाते हैं या ये खाता हमारा जमा।
पहली चीज, दूसरों को सुख देना, ये सबसे बड़ा पुण्य है
जी।
असहायों को सहयोग देना, सहारा देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। मैं नेगेटिव बात भी बता दूं, लोग नॉन वेज खाते हैं बड़े खुशी से, वो बहुत बड़ा पाप है। लोग ड्रिंकिंग करते हैं, वो बहुत बड़ा पाप है। लोग मुख से कटु वचन बोलते हैं, दूसरों को सताते हैं, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरे की खुशी को छीन लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। और दूसरों को खुशी प्रदान कर देना, अच्छे शब्द बोलकर प्यार की फीलिंग दूसरों को दे देना, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इन छोटे छोटे पुण्यों पर जो मनुष्य रोज कर सकता है, सहज भाव से कर सकता है, मनुष्य को बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी चोरी करना, किसी का मर्डर करना, किसी की संपत्ति हड़प लेना, ये तो बड़े बड़े पाप हो गए।
बिल्कुल प्रदीप जी, गीता में एक श्लोक है कि जहाँ तक पाप और पुण्य की जो बात आ रही है कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मुक्तिस्यामि मा शुचः। तो परमात्मा की शरण में भी आ जाने से क्या हमारे पाप, यदि हमने बहुत पाप किए हैं, वो नष्ट हो जाते हैं?
बात ये बहुत ही गुह्य है। परमात्मा की शरण में चले जाना और फिर परमात्मा ऐसी आत्मा को स्वीकार करे, दोनों चीजें है ना इम्पोर्टेंट। एक राजा हार कर दूसरे राजा की शरण में जाता था, कभी कभी वो राजा कमजोर होता था, कह देता था ना भाई मैं तुम्हें शरण नहीं दूंगा, वो राजा बड़ा पावरफुल है, मेरे पे भी अटैक करेगा, मेरी भी राजा जाएगी, इसलिए तुम कहीं और चले जाओ। तो प्रभु शरण में आ जाना, माना अपने को पूरी तरह समर्पित कर देना
जी।
और इसके बाद की जो बात है असली, वो है कि जब हमने अपने को पूरी तरह उनके हवाले कर दिया तो जैसे वो कहें वैसे करना। अब वो अच्छी तरह सिखाते हैं पवित्र बनो, पवित्र बनना सबसे बड़ा पुण्य है। अब ये पाप कर्म छोड़ दो, दूसरों को दुख देना छोड़ दो, और उनकी विशेष आज्ञा पुनः वही होती है कि निरंतर मुझसे बुद्धि योग जोड़ो, योग युक्त हो जाओ, तो ये पाप सभी तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे।
बिल्कुल, मतलब केवल समर्पित नहीं होना है, शरण में नहीं आना है, लेकिन उनकी आज्ञाओं पर भी हमें चलना होगा, तब जाकर के हमारे पाप नष्ट होंगे। पता जी, जैसे आपने कहा कि एक वो बच्चा जो है वो रोता ही रहता है, एक ऐसा ही SMS आया है, ये कहते हैं कि ढाई मास की एक बच्ची है, वो 10 दिनों से बिल्कुल सो नहीं रही है, लगातार रो रही है और साथ ही वो डर भी रही है। हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो डॉक्टर्स भी कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं और जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही है उसका, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? वही वाली स्थिति,
बिल्कुल वही स्थिति है और हो यहीगा, क्योंकि ढाई मास ही है, उसने तो न किसी को कुछ बोला है न उसको किसी ने कुछ बोला है, ये पूर्व जन्मों के उसके विकर्म जागृत हो गए हैं, इसलिए वो सो नहीं पा रही। ये बिल्कुल सत्य हो सकता है कि पूर्व जन्म में, इससे पहले ही जन्म में उसने लंबा काल अनिद्रा की स्थिति में व्यतीत किया हो, क्योंकि ये बीमारी भी आजकल बहुत बढ़ती जा रही है। इसमें बस दूसरा व्यक्ति जो उसको मदद कर सकता है, उसकी माँ करे, दादी करे, जो भी उनके यहाँ राजयोग का अभ्यास करते हैं, उसके पास बैठकर, थोड़ा आसपास बैठकर 1 घंटा पावरफुल राजयोग का अभ्यास करें। इससे उसको गुड वाइब्रेशंस जाएंगे और उसके वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे जो तत्काल विकर्म है, जो इफेक्ट करने लगे हैं उसको बहुत ज्यादा, और वो रिलैक्स होगा बच्चा। दूसरी चीज ये है कि उसके ब्रेन को एनर्जी दी जाए, क्योंकि ये जो विकर्म है ये आजकल मुख्य रूप से क्या काम कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे डॉक्टर इस बात को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे, कि ब्रेन को ज्यादा हाइपर एक्टिव कर दिया है उन्होंने। अब ब्रेन उनका शांत ही नहीं हो रहा है बच्चे का, ब्रेन जब तक शांत नहीं होगा तो बच्चा रिलैक्स होगा नहीं और वो सो नहीं पाएगा
जी।
तो उसका ब्रेन जो हाइपर एक्टिव हो गया है उसको एनर्जी देनी चाहिए, चाहे सिर पर हाथ रख के, चाहे थोड़ा पास में हाथ रख के, कोई भी अच्छा राजयोगी ये काम करे तो उसका ब्रेन जल्द ही नॉर्मल और शांत हो सकता है और बच्चा सो जाएगा।
बिल्कुल प्रति जी, कई बार लोग ये कहते हैं कि किसी की नजर लग गई है बच्चे को, क्या ऐसे नजर लगने वाली भी बात
होती है? बच्चों को ये बहुत होता है और ये तो एक बड़ी ही कॉमन और वेल नोन बात है कि बच्चों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, और ये तो उसके माँ बाप या दादी भी जानते हैं। अगर ऐसा हो तो बच्चे की नजर भी उतार देनी चाहिए, अगर कुछ उसका ही प्रभाव है तो जल्दी ठीक हो जाएगा।
बिल्कुल, एक बार बता जी, हमारे पड़ोस में जब मैं छोटा था तो हमारे पड़ोस में ही एक छोटा सा बच्चा हुआ, तो वो बच्चा भी लगातार रोता रहता था, तो किसी ने सजेस्ट किया उनके पेरेंट्स को कि शायद आपने अपने कुल देवता की ठीक से पूजा नहीं की है, उसकी पहले पूजा करो, वो शायद रुष्ट हो गए हैं इसलिए बच्चा लगातार रोता, वो भी लगातार 2-3 महीने तक रोता, दिन रात रोता था। तो उन्होंने अपने कुल देवता की पूजा अर्चना की तो बच्चा शांत हुआ, तो ये बात समझ में नहीं आई कि ये क्या होता है।
हर जगह एक कुल देवी या कुल देवता होते ही हैं
जी,
जैसे गुजरात का इधर हमारी और अंबाजी है, और भी एक दो देवी देवता जहां तहां रहते हैं, नॉर्थ की भी दुर्गा देवी हिमालय में सहारनपुर के ऊपर माँ शाकुंभरी देवी रहती है, ऐसे ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिनको लोग कुल देव या कुल देवी कहते हैं वो रहते ही हैं, और क्योंकि एक भावनात्मक रूप से मनुष्य उनसे जुड़ा रहता है। मैंने जैसे कहा कि ये सब कारण मूल रूप में तो मनुष्य के विकर्म का प्रभाव ही होते, पर उनका प्रत्यक्ष इफेक्ट ये भी हो जाता है बच्चों पर, इसलिए ऐसे में पंडित जो भी राय दें अपने कुलदेव या देवी को भी उस तरह प्रसन्न कर लेने से कई बार गुड रिजल्ट सामने आते हैं।
चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए रहते जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, नमस्कार।
धैर्य और दृढ़ मनोबल से
कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कटनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान,
सारा ये जहान
कहता है ये समाधान समाधान समाधान।